ओम शांति। कहीं आवाज आई, सुने किसी ने? नहीं सुनी। ओम शांति। बहुत धन्यवाद। सवेरे आपने शर्मानेजर ऑफ गीता का एपिसोड के बारे में आपने राजयोगिनी उषा बहन जी से सुना, उसी के कंटिन्यूएशन में वापिस ये सेशन शुरू हो रहा है। सवेरे कैसा लगा आपको? ये भी आवाज नहीं आई। कैसा लगा? अभी और कंटिन्यू करें तो जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत तो करिए।
ओम शांति। आज सवेरे के सत्र में हमने गीता के विषय में कई सारी बातें सुनी। श्रीमद् भगवद् गीता, जिसके ऊपर हाथ रख करके आप लोग सभी रोज कसम उठवाते हैं, गीता को तो बहुत मानते हैं, गीता की कितना मानते हैं, क्योंकि जब तक उसको यथार्थ समझा नहीं होता है तब तक उसको किस तरह से स्वीकार करे और अप्लाई करे। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बताई कि एक होता है जानना और दूसरा होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। श्रीमद् भगवद् गीता को हम सभी पढ़ते हैं, घरों में हर एक ने रखी होगी, पूजा करते हैं, लेकिन उस गीता में से कितनी बातों को प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाते हैं जीवन में? क्योंकि जब तक उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं तब तक जीवन में उसका आनंद नहीं हो सकता है। तो आज सवेरे हम सभी ने ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझी कि जहां वेद व्यास जी स्वयं एडमिट कर रहे हैं कि ये ज्ञान मुझे अपनी समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, जो मेरे ही मन की कल्पनाओं के विस्तार से मैं लिखवा रहा हूं। और इस तरह से गणेश जी का आवाहन करते, जो बुद्धि के देवता है, कोई साधारण मनुष्य से नहीं लिखवाया गया, क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान था कि जिसको लिखने के लिए भी ऐसी ही हस्ती चाहिए, नहीं तो क्या वेद व्यास जी के समय कोई मनुष्य नहीं थे क्या? तो इसलिए कहा कि उसमें कई गुह्य बातें हैं जिसको अच्छी तरह से समझना पड़ता है। और तब हमने प्रैक्टिकल में देखा कि अर्जुन कौन है, पांडव कौन है, कौरव कौन है, और किस तरह वेद व्यास जी ने वर्तमान समय का ही एक चित्रण महाभारत के रूप में अपनी मन की कल्पनाओं के विस्तार से किया है, जिसमें लिए गए एक एक कैरेक्टर्स जो वर्तमान समय में मौजूद है उसको लेकर के ये सारी कहानी बनाई, कथा बनाई। और वो कथा में जिस तरह से एक एक बात को स्पष्ट किया गया है, आज दिन तक हम ऐसे ही मानते थे कि ये महाभारत की कथा पांडव और कौरव की है, हमारा क्या मतलब आया? लेकिन आज समझ में आया कि तो हमारे इसी समाज की या इसी दुनिया की कहानी है, जहां एक एक को क्यों नहीं उसको जीवन में लागू कर पाते हैं, कौन सी बातें विघ्न रूप में आती है। अर्जुन के मन के प्रश्न जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न हो सकते हैं, और इसलिए जब उसने पूछा कि ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने के लिए क्या आप हम सबकी तरह पैदा होते हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हैं और वो जन्म है। मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता और कब प्रकट करता हूं, तो जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं संसार में आता हूं। और इसीलिए हर युग की बात नहीं की गई है, जैसे कहा कि हां गीता के अंदर काफी एडिशन करेक्शंस सब्ट्रैक्शंस हो गए हैं, इसीलिए शायद लोगों को समझ में नहीं आया। और उसके बाद जो भगवान ने कहा कि मैं अति साधारण स्वरूप में आता हूं, साधारण स्वरूप नर स्वरूप है, श्री कृष्ण के रूप में आए तो कौन उसको नहीं पहचानेंगे, हर कोई उसको पहचानेंगे। इसीलिए भगवान को साधारण रूप लेना पड़ता है ताकि वो अपना कार्य कर सके। और बाकी देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं, तो ये भी बात हमने देखी गीता में ही, भगवान ने स्पष्ट कर दी कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं से मारी गई है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा के पास पहुंचने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं तो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और पूजा के विधि विधान भी उसी अनुसार बना देते हैं जैसे उनका स्वभाव होता है। किंतु प्राप्तियां जो कराने वाला है वो परमात्मा स्वयं है, लेकिन क्योंकि देवताओं के सन्मुख गए इसलिए वो प्राप्ति सीमित और क्षणिक हो जाती है, सदाकाल की नहीं हो पाती है। और फिर जब भगवान से पूछा अर्जुन ने कि परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते हैं, तो भगवान ने कहा क्योंकि सभी प्राणी इच्छा और द्वेष, राग द्वेषादि द्वंद से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो मुझे नहीं पहचान पाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को, व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं, वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके आगे प्रत्यक्ष नहीं होता। वो स्वयं अपने आप को सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं जान पाते हैं। लेकिन जिसमें अवतरित होते हैं उनके तीनों कालों को वो जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। आगे फिर अर्जुन का एक और प्रश्न कि परमात्मा को फिर कौन जान पाते हैं, चलो नहीं जानते हैं उसका कारण तो समझ लिया, लेकिन फिर कौन जान पाते हैं? तो भगवान ने कहा जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और राग द्वेषादि द्वंद के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं, जो अपने जीवन के अंदर पवित्रता का व्रत में दृढ़ रहता है, मुझ में अपने मन को एकाग्र करता है, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवताओं और यज्ञ की विधियों का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। कि ये सारे संसार का नियंत्रक किस तरह मैं हूं वो सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे कहा पात्रता चाहिए, बुद्धि की पात्रता चाहिए। और ये पात्रता के लिए ही कहा कि अपने व्रत में जो दृढ़ रहता है वही उसको जान पाते हैं। बाकी जो इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के विषय विकारों में है, उनमें जुड़े हुए हैं, तो पवित्र कर्म उससे होते नहीं है, पुण्य कर्म होते नहीं है। इसीलिए कहा जाता कि कलयुग के अंदर जाने अनजाने पन में भी बहुत पाप कर्म हो जाता है। और इसलिए जहां पाप कर्म का बोझ इतना अधिक है तो परमात्मा को कैसे जान पाते हैं। और पात्रता को डेवलप करने के लिए यही कहा कि जो मोह से मुक्त और अपने व्रत में दृढ़ रहकर मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं वही उस पात्रता को डेवलप कर सकते हैं। और फिर आठवें अध्याय के अंदर पुनः भगवान अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप के बारे में स्पष्ट करता है। चौथे अध्याय में तो कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं आता हूं। अब और स्पष्टीकरण करते कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं, अनादि, मैं आदि अंत के इस चक्र में नहीं आता हूं, अनादि इटर्नल, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूरत, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं, मुझे अपना शरीर नहीं है, क्योंकि मैं नित्य फॉरएवर सदा काल के लिए अपने दिव्य प्रकाश स्वरूप में ही स्थित होता हूं। यह गीता के महावाक्य है, भगवान उवाच, कि जहां और अच्छी तरह से अपने स्वरूप के बारे में स्पष्टीकरण मिलता है आठवें अध्याय में, और फिर अपने निवास स्थान के बारे में भी वो अर्जुन को कहता है कि ये पंच तत्व के दुनिया के अतिरिक्त एक अव्यक्त, जहां व्यक्त शरीर नहीं है, एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है, वो भी इटर्नल है, जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। माना आफ्टर अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं होता है, और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है, अविनाशी और सबसे परे है, वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं उस दुनिया का निवासी हूं, परमधाम में विराजमान हूं, सर्वव्यापकता की तो बात ही नहीं है। गीता में जब भगवान उवाच है कि मेरा धाम परमधाम है, और उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया कि पांच तत्वों की दुनिया से पार है, वो भी सदा शाश्वत है, व्यक्त अव्यक्त से परे है, अविनाशी है, वो धाम मेरा धाम है, परम धाम है जहां मैं विराजमान, तो वहां का निवासी है। और फिर नवे अध्याय में वो अपनी कार्य प्रणाली बताते हैं, बहुत गुह्यते गुह्य गुप्त राज बताते हैं, एक सीक्रेट हम सभी के सामने खोलते हैं कि ये दुनिया की कार्य प्रणाली कैसे करता हूं मैं, अव्यक्त होने के बावजूद भी मैं कैसे करता हूं। तो भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है, तुम मनुष्य जैसे मैं काम नहीं करता हूं, जितने भी पदार्थ रचे गए हैं वे मेरे भीतर नहीं है, बहुत स्पष्ट कह दिया कि मेरे भीतर नहीं है, मैं सभी चैतन्य प्राणियों का भी पालनहार हूं, मैं सस्टेनेंस जरूर देता हूं, है ना? ये कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मेरी उसमें आसक्ति नहीं, मेरा मोह नहीं है, इसलिए वो कर्म मुझे बांधते नहीं, और मैं तटस्थ व निरपेक्ष हूं, मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन, मैंने रचा है लेकिन आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं, मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं, सकाश से, थ्रू वाइब्रेशंस, उससे मैं रचता हूं, और ये संसार का चक्र घूमता रहता है। इस तरह परमात्मा के कार्य करने की प्रणाली है, एकदम यूनिक और अलौकिक, लौकिक मनुष्य जैसी नहीं है। तो अव्यक्त पुरुष कैसे इस चराचर जगत को रचते हैं, अपनी सकाश से उसको रचते हैं, अपनी पावर से, सकाश माना अपनी पावर से उसको रचते हैं। फिर बहुत सुंदर बात इसी नवे अध्याय में भगवान ने कही है कि जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूं, नव डायरेक्ट शब्द में कहा है नवे अध्याय में ये बात कि जब मैं मनुष्य में अवतरित होता, भगवान ने स्पष्ट कर दिया मैं कोई दिव्य स्वरूप लेकर के नहीं आता। अति साधारण सातवें अध्याय में भी ये बात कही, नौवें अध्याय में पुनः कहते हैं और स्पष्ट तरीके से, क्योंकि अभी तक अर्जुन भी समझ नहीं पाया है, इसीलिए भगवान को बार बार अलग अलग ढंग से उसको कहना पड़ रहा है कि जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, दे लाफ एट मी, सोचते हैं कि भगवान कैसे मनुष्य स्वरूप में आ सकता है, तो हंसी उड़ाते हैं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले होते, न जानने का कारण भी बता दिया कि मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले हैं, इसलिए मेरे दिव्य स्वरूप को जानने की कैपेसिटी उनके बुद्धि में नहीं है। तब भगवान से पुनः पूछते हैं सवाल, तो कौन जानते हैं, पहले भी पूछा तो कहा पुण्य कर्म करने वाले, उसके पहले भी जब चौथे अध्याय में पूछा तो कहा तत्वदर्शी जो है, जो ज्ञान के आधार से मुझे जानते हैं वो समझ पाते हैं। अब पुनः तीसरी बार वो पूछता है, माना कितना कंफ्यूज्ड है अर्जुन ईश्वर के विषय को लेकर के। तो भगवान कहते हैं जो मोह मुक्त दैवी प्रकृति यानी दैवी संस्कारों से जीने वाले हैं, वैल्यूज के आधार पर जो जीने वाले हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते, अनन्य माना अन्य और कोई नहीं सिर्फ मैं, अनन्य इतना प्रेम से जो मुझे याद करते हैं, प्रेम भाव से जो मुझे याद करते हैं, वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योगयुक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं, नित्य मेरी याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बहुत स्पष्ट भगवान ने बता दिया कि जब मैं मनुष्य स्वरूप में अवतरित होता हूं, यानी यही तो साधारण स्वरूप है जिस कारण मनुष्य पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचानते हैं, तो कहा मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले जो है, इसलिए मुझे कैसे पहचान सकते, वो पात्रता नहीं है। और फिर भगवान ने और एक बहुत सुंदर बात यहां कही है, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, यानी भगवान को जानने का आधार ज्ञान है, जो थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम कहा, ये विजडम का जो नेत्र है यानी ज्ञान के चक्षु है, तो जो ज्ञान के चक्षु जिसके पास नहीं है और वो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते, याद परमात्मा को करते हैं, लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं है इसीलिए क्या समझते हैं, ये देवी देवता ही परमात्मा है, तो याद तो उस परमात्मा को कर रहे हैं ना, मालूम नहीं इसीलिए देवताओं को याद कर लिया और श्रद्धा पूर्वक उनको पूछते हैं, परमात्मा समझ करके पूछते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, फिर भी परमात्मा कितना दयालु कृपालु है कि उसका फल क्या है, अज्ञानता से ही सही, भले याद उस परमात्मा को किया लेकिन देवताओं के रूप में किया और उसको पूछते हैं, तो भी उसका फल है कि वो देवताओं के बीच में जाकर जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूछते हैं, अपने एंसेस्टर्स को पूछते हैं, वो पितरों के पास चले जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते, यहां ये बहुत गहरी बात भगवान ने बताई है, क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग माना ही तंत्र मंत्र जंत्र का युग है, और इसीलिए जहां तांत्रिक विद्याओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए भगवान ने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो करते नहीं लेकिन करवाते हैं, बस जो करवाने वाले हैं वो कहां जाएंगे, खुद ना करे लेकिन करवाने वाले वो भी कहां जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो इन तांत्रिक विद्याओं का सपोर्ट लेते हैं उसकी गति बहुत बुरी होती है, क्योंकि गीता में ये बात बहुत स्पष्ट भगवान ने समझा दी कि उसकी गति क्या होती है, वो कहां जाते हैं, वो उन्हीं के बीच में जाते हैं और वही यातनाएं उनको भी भोगनी पड़ती है। जिस तरह से दूसरे उनको वश करते हैं वैसे वो भी जब जाते हैं तो लोग उनको भी परवश करके, कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों की एक गुह्य गति है, यह गुह्य गति भगवान बताते हैं, क्योंकि गीता माना ही कर्म के गुह्य गति का ज्ञान है। गीता के अंदर लगभग 50 से 60 श्लोक कर्मों को लेकर के, जैसे कहा योग को लेकर के 100 से 150 श्लोक है योग को लेकर के, युद्ध को लेकर के 25 श्लोक है, उससे अधिक नहीं है, तो कर्मों को लेकर के 50-60 श्लोक है गीता के अंदर, और बाकी लगभग 150 श्लोक आत्मा को लेकर के हैं, परमात्मा का स्पष्टीकरण को लेकर के लगभग 150 श्लोक है, 100 से 150 श्लोक के बीच में परमात्मा का स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से अगर कैटेगराइज करें तो कितने श्लोक किस विषय को लेकर के है, तो कर्मों की गुह्य गति भी बहुत अच्छी तरह से गीता में एक्सप्लेन की हुई है कि जो देवताओं को पूजते हैं वो उन्हीं के बीच में जाते हैं, क्योंकि भावना परमात्मा के प्रति है, तो परमात्मा फल तो श्रेष्ठ ही देता है अपने भक्तों को। जो पितरों को याद करते हैं उनका लगाव पितरों से है वो वहां चले जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं या करवाते हैं वो उन्हीं के बीच में जाते हैं, ये भी एक कर्म की बहुत गुह्य गति है। उसके बाद 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अपने प्रिय अर्जुन को, अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवता न ही महर्षिगण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। देवताएं भी नहीं जानते हैं परमात्मा किस तरह संसार में कार्य करते हैं, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस संसार में कैसे अवतरित होते हैं, नहीं महर्षिगण जानते हैं। मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। पुनः भगवान ने अर्जुन प्रश्न करे उसके पहले ही बता दिया कि मैं अजन्मा तो कौन मुझे जान सकता, मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान आत्माएं ही मुझ अजन्मा को अच्छी तरह समझ पाते हैं। फिर अर्जुन का एक बहुत सुंदर सवाल है, शायद हम सबके मन में भी है कि अब उसने धीरे धीरे भगवान के भाव को समझा कि आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं, अपनी वास्तविकता के बारे में क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं आप परमधाम के वासी है, अभी मैंने समझ लिया कि आप परमधाम के वासी है, परम पवित्र परम सत्य हो, आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो, महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। अब उसके सवाल बदली बदल जाते हैं। अब उसने समझा कि भगवान मुझे क्या कहना चाहते हैं, तो अब मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं, आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न ही असुर समझ सकते हैं, आप देवों के भी देव हो, त्रिलोकी नाथ हो। अब अर्जुन निवेदन करता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य के बारे में बताएं और किस तरह मैं आपका चिंतन करूं। अब वो जानना चाहता है कि अब मैं आपको किस स्वरूप में याद करूं। अब उसने समझ लिया कि ये जो स्वरूप है, यानी श्री कृष्ण का नर स्वरूप, तभी तो कहा गया नर से सो नारायण, नारी से सुश्री लक्ष्मी। तो श्री कृष्ण का नर स्वरूप कौन सा है? अब वो साधारण स्वरूप को उसने समझा, इसलिए कहते हैं अब मैं आपके दैवी ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहता हूं और मैं आपको किस स्वरूप में याद करूं उसके विषय में जानना चाहता। अब अर्जुन का सवाल बदल गया, इतना स्पष्टीकरण जब कर लिया, बार बार जब कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, इतना ज्ञान देने के बाद तो अर्जुन की जगह पर कोई भी होता था तो शायद यही निवेदन करता था कि अब मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज। और इसलिए अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान वाश जो सवाल पूछा गया है उसके हिसाब से बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, इट्स अनलिमिटेड, बहुत अनंत है, मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, मैं भी आत्मा लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणी 81 श्रेणियों में जो सर्वोच्च स्थिति होती है उसका वर्णन करके अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं स्पष्ट की। भावार के उसकी जो क्वालिफिकेशंस है परमात्मा की, उसकी कंपैरिजन में 81 चीजों को भगवान ने कंपेयर करने के लिए उसका माध्यम लिया ताकि वो अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को स्पष्टीकरण दे सके। और इस तरह से वो 81 श्रेणियां कौन सी है तो कहा प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। अब प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य का मतलब सूर्य में परमात्मा है ये नहीं कहा, कंपैरिजन किया कि मेरा स्वरूप प्रकाशमान है, आई एम द इटर्नल लाइट, और वो लाइट कैसी है तो प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, आई एम दैट इटर्नल लाइट। इसका मतलब सूर्य में है ये नहीं कहा, इसीलिए पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपने सर्वोच्च स्थिति का वर्णन, अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं स्पष्ट करते हुए किससे कंपेयर करें, तो एक एक बात को लेकर के कंपैरिजन कर रहे हैं, एक एक गुण और विशेषताओं को लेकर के। तो प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हूं, अनंत प्रकाशमान, नूरे इलाही, गॉड इज लाइट, तेजोमय स्वरूप हूं, है ना। तो प्रकाशों में माना मेरा स्वरूप प्रकाशमान है लेकिन ऐसे दहकने वाला नहीं हूं, इसलिए नेक्स्ट लाइन आती है नक्षत्रों में चंद्रमा के समान, आई एम इक्वली कूल, इतना शीतल हूं मैं। तो नक्षत्रों में चंद्रमा के समान कंपैरिजन कर दिया, प्रकाशों में सूर्य के समान हूं लेकिन ऐसे दहकने वाला नहीं हूं कि जो मेरे समीप भी कोई नहीं आ सकता है, इसलिए कहा नक्षत्रों में चंद्रमा के समान शीतल हूं। समस्त पर्वतों में मेरु, आई एम द हाइएस्ट अथॉरिटी, द सुप्रीम अथॉरिटी। तो पर्वतों में श्रेष्ठ, मेरु के समान हूं। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हूं, ऐसे ज्ञानवान। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय के समान हूं, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान हूं। तो कार्तिकेय के समान हूं। समस्त जलाशयों में समुद्र, अनलिमिटेड, इन्फिनिट। तो समुद्र के साथ मेरी महिमा की कंपैरिजन है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो कहा समस्त जलाशयों में समुद्र की तरह मेरी महिमा है, महर्षियों में भृगु की तरह हूं। ऐसे पवित्र आत्मा, तो महर्षियों में भृगु, वाणी में दिव्य ओमकार, आई एम द एसेंस। इसीलिए लोग कहते हैं ओम हैज 100 मीनिंग्स। तो आई एम द एसेंस ऑफ नॉलेज। तो वाणी में दिव्य ओमकार, समस्त अचलों में हिमालय की तरह हूं, आई एम एवर प्योर, एवर स्टेबल। तो समस्त अचलों में हिमालय की तरह अचल, जिसको कोई शेक नहीं कर सकता है। समस्त वृक्षों में पीपल हूं, इसका मतलब पीपल में भगवान है ऐसा नहीं कहा। समस्त वृक्षों में पीपल, पीपल क्यों कहा? लोगों ने पीपल की पूजा शुरू कर दी इसीलिए। लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये एक ही वृक्ष है पीपल का, जो 24 आवर्स ऑक्सीजन निकालता है, 24 आवर्स ऑक्सीजन निकालता है। और इसीलिए लोग उस पेड़ को काटे नहीं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता हो। इसीलिए पीपल को एक धार्मिकता के साथ जोड़ दिया गया, ताकि लोगों की एक अंधविश्वास के कारण भी, उसकी पूजा करने के कारण भी, कम से कम उस पेड़ को काटे नहीं। इसलिए कहा भारत में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज जब थी तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे, कई चीजों का रहस्य वो बता नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे, तो उनको धार्मिक प्रवृत्ति के साथ जोड़ दिया गया, ताकि एक अंधश्रद्धा के भाव से भी वो उस चीज को परमानेंट रखे, उसकी सुरक्षा करे, ताकि पीपल के पेड़ को कोई काटे नहीं। क्योंकि दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन का सोर्स कम होता जा रहा है। हमारे पास यहां पर एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, जैसे अलग अलग प्रोफेशनल्स का प्रोग्राम चलता है, जूरिस्ट विंग का है, अगला ग्रुप हमारा पॉलिटिशियन विंग का है, पॉलिटिशियंस का है। लोग हमें कई बार कहते हैं आप दूसरों को तो सुधारते, पॉलिटिशियंस को कब सुधारेंगे, है ना? इसलिए हमने अगला ग्रुप उनका रखा है, सारे पॉलिटिशियंस को बुलाया है, 500 पॉलिटिशियंस ऑल इंडिया से आने वाले हैं, है ना? और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को बुला रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बाद ब्यूरोक्रेट्स का प्रोग्राम है यहां पर। उनको भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आजकल तो हरेक को सुधारने की जरूरत है, है ना? खाली ज्यूरिस्टों को सुधारना है ऐसे नहीं है, है ना? भावार्थ ये है कि यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन यहां लगाई थी कि जिसमें पेड़ों की हिस्ट्री बताई जाती थी। तो जब पेड़ों की हिस्ट्री बताते थे तो बताया कि किस तरह पेड़ जो है आधार है ऑक्सीजन देने के लिए। तो उस समय बातचीत करते करते हमने उनको सवाल पूछा कि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये पॉपुलेशन को सरवाइव होने के लिए कितना परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए? तब उन्होंने कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय में तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचने लगती है। इसीलिए हमने उनको पूछा कि वर्तमान समय में कितने फॉरेस्ट है, तब उन्होंने कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो जाए तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब आप सोचो 11 से 9 होने में कितना दिन लगेगा या कितने साल लगेंगे। कई लोग हमें पूछते विनाश कब होने वाला है या दुनिया कब खत्म होने वाली है, परिवर्तन कब होंगी, सत्ययुग कब आएगा, कितना समय बाकी है। अब 11 से 9 होने में कितना समय लगेगा बताओ, उतने ही साल है। इसीलिए डॉक्टर्स जो कह रहे थे, अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि रात्रि के समय में अभी हार्ट अटैक्स नंबर 1 पर जा रहे हैं, है ना। और अधिकतर हार्ट अटैक्स कब आते हैं, एक तो लाइफस्टाइल तो है ही खराब, ये बात तो अलग है, लेकिन हार्ट अटैक अधिकतर कब आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, 3 से 4 के बीच में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि रात्रि के समय माना ये 3-4 बजे सिर्फ 2% ऑक्सीजन वातावरण के अंदर रहता है, और इसीलिए जो ऑलरेडी ब्लॉकेजेस वाले हैं वो अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अस्थमा पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि रात्रि में ही उसको अस्थमा अटैक आता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, सबसे कम है। और इसीलिए कहा अगर 9% हो गया तो ये रात्रि के समय जो 2% है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। तब कहा भगवान ने कि समस्त वृक्षों में पीपल के समान हूं, कि मैं थ्रू आउट मनुष्य को जो प्राण वायु चाहिए वो जैसे देने वाला हूं, आई एम द वन हु इज द बिस्टोअर ऑफ लाइफ। तो इसीलिए कहा समस्त वृक्षों में पीपल के समान, सिद्ध पुरुषों में कपिल के समान, माना कपिल में है ये नहीं कहा, उनके जैसे मैं सिद्ध आत्मा हूं, गजराजों में ऐरावत हूं, गजराजों में आई एम लाइक ऐरावत, माना इतना पावरफुल, गजराज पावरफुल होते हैं तो आई एम ऑल माइटी, लेकिन उसके बाद भी ऐरावत माना बहुत सुंदर, और मनुष्य में राजा की तरह हूं, आई एम ऑल माइटी अथॉरिटी, राजा की तरह, आई हैव ऑल द पावर्स इन माई हैंड्स, सारी शक्तियां मेरे पास है, राजा की तरह, हथियारों में व्रज की तरह हूं, माना इतना शक्तिशाली हूं, गायों में सुरभि की तरह, सुरभि यानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। तो जो सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं उनकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, इसलिए कहा गायों में सुरभि के समान हूं, सुरभि में हूं ये नहीं कहा, सुरभि के समान हूं, दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद की तरह हूं, प्योर दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद की तरह हूं, पशुओं में सिंह हूं, यानी आई एम स्ट्रांग ब्रेव जैसे सिंह है, एक राजा है, और पक्षियों में गरुड़ की तरह है, गरुड़ सबसे ऊंचा उड़ता है। तो इतना सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा है, शस्त्रधारियों में श्री राम की तरह, है ना, शस्त्रधारियों में श्री राम की तरह हूं, श्री राम में हूं ये नहीं कहा, श्री राम की तरह हूं, नदियों में गंगा की तरह, आई एम एवर प्योर एवर फ्लोइंग, है ना, कि ज्ञान परमात्मा का जो अनेकों को पावन करने वाला ज्ञान गंगा जो है नित्य बहती है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, लेकिन वो प्योर नॉलेज जो सबको प्यूरिफाई करता है वो नित्य बहता है। तो नदियों में गंगा के समान हूं, समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या, आई एम ऑल नॉलेजफुल। लेकिन वो नॉलेज कौन सा है? दुनिया का ज्ञान मुझे रखने की जरूरत नहीं है, आई एम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु, मेरे अंदर कभी पतझड़ आए किसी व्यक्ति के प्रति, किसी आई एम इक्वल एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, राम हो या रावण हो। रावण ने भी तपस्या की तो उसको भी शक्तियां दे दी, ये नहीं सोचा भगवान ने कि वो शक्तियों से क्या करेगा, इसीलिए तो उसको भोलानाथ कहा है। कि रावण ने याद किया, तपस्या किया तो उसको भी शक्तियां प्रदान कर दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्तियां प्रदान कर दी। तो आई एम कॉन्स्टेंट फॉर एवरी वन, तो ऋतुओं में बसंत ऋतु की तरह हूं, समस्त मुनियों में व्यास की तरह हूं, व्यास माना जैसे मैंने कहा विस्तार, आई एम अनलिमिटेड इन माई क्वालिटीज, समस्त सृष्टि का मैं बीज हूं, एसेंस ऑफ द एंटायर क्रिएशन, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं। माना इतना 81 कंपैरिजंस के बाद भी भगवान क्या कहते हैं, आई एम अनलिमिटेड इन माई डिवाइन फॉर्म, कि मेरी विभूति का अंत नहीं है। सारा ऐश्वर्य सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियों का वह सिर्फ मेरे स्वरूप का एक अंश है। वट एवर आई हैव डिस्क्राइब्ड That is just a part and parcel of it. That is also incapable to explain my divine form. It is incapable to explain my वो ऐश्वर्य जो है उसको explain नहीं कर सकता है। ये है परमात्मा का दिव्य स्वरूप, गीता कितना स्पष्ट बताती है। लेकिन कभी हमने इस बातों में सोचा तक नहीं, और लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन दे दिया, सूर्य में भी है, चंद्र में भी है, नदियों में भी है, पीपल में भी है, सुरभि में भी है, रावत, सब सबकी पूजा करो, सर्वव्यापी है। और इसीलिए न समझने के कारण ही सर्वव्यापकता का कॉन्सेप्ट आया, अज्ञान मनुष्य का। देखो इसलिए मैंने कहा जो ज्ञान उस कॉन्शियसनेस में दिया गया है वो आज का मनुष्य ये कॉन्शियसनेस लेवल पर उस कॉन्शियसनेस की बात को कितना समझ पाता है। जब तक वो खुद आकर के न समझाए तब तक हम लोगों को भी थोड़ी मालूम था कि गीता क्या कहना चाहती है, कि ईश्वर का ऐश्वर्य कितना असीम है, उसका सौंदर्य कितना असीम है, उसकी दिव्यता कितनी असीम है, उसकी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी 81 श्रेणियों की सर्वोच्च स्थिति को भी डिस्क्राइब करने के बाद भी वो कहते इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, खाली एक अंश मात्र है, फिर भी मेरी असीम ऐश्वर्य उससे कई गुना अधिक है। समझ में आई बात को, है ना? कितना सुंदर वर्णन है। तब अर्जुन की आंखें खुलती है, इतना सुनने के बाद अब वो झुक जाता है। जैसे आप लोग ने भी सुन करके जरूर मन में आया होगा कि अब वो स्वरूप को देखना चाहिए कि नहीं, हा? तो अर्जुन के मन में भी यही आया कि अगर इतना असीम है तो वो स्वरूप कैसा होगा, उसको देखना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान सुनाया उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है, और इसलिए यदि आप मानते हैं, अब तक प्रश्न कैसे थे, कौन जानता है, कौन नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, कैसे जानता है, यही सवाल थे। लेकिन अब जैसे उसने सुना कि वो असीम ऐश्वर्य क्या है, तो कहा कि अब यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। इफ यू थिंक आई एम वर्दी ऑफ इट, मैं अगर पात्र हूं तो मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भावार्थ ये है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता उसको दे देते हैं। When he grants the third eye of divine wisdom, माना उसकी बुद्धि को ऐसा वरदान देते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। और इसलिए मैं यही पूछना चाहती हूं, क्या आप सभी अर्जुनों को भी ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुए या नहीं हुए? क्योंकि भगवान ने कहा ये आंखों से तो नहीं देख सकते, ज्ञान के आधार पर मेरी विभूति को जान सकते, तो वो ज्ञान मिला कि नहीं मिला? मिला है ना। और इसीलिए जब यह दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते, उसको थर्ड आई वरदान के रूप में देते हैं, तो यह तीसरा नेत्र सिर्फ चार लोगों के पास था। कौन कौन? वेद व्यास जी जिसने समाधि अवस्था में उस रूप को देखा, संजय, अर्जुन, क्योंकि इतनी उसकी निर्माणता थी, हर बात को ग्रहण करने के लिए जैसे उत्सुक था, तो भगवान ने उसको भी दिया, और चौथा भीष्म पितामह, क्योंकि पवित्रता थी, ब्रह्मचर्य व्रत था, तो पवित्रता ही तो पात्रता। भगवान ने पहले ही बताया कि जो अपने व्रत में दृढ़ रहता है वो मेरे को जान सकता है, इसीलिए भीष्म पितामह भी जानता था। ये चार ही आत्माएं थे जिनके पास ये दिव्य चक्षु उस समय प्राप्त हुए, और तब भगवान ने अपना असीम स्वरूप जो दिखाया, जो संजय ने वर्णन किया, अर्जुन तो उसमें खो गया, इसलिए यहां पर ये दिव्य स्वरूप का वर्णन संजय करके सुनाता है धृतराष्ट्र को, और कहा आकाश में एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने जितना प्रकाश होता है वह उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा, और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है ना? तो जैसे नतमस्तक हो गया, सरेंडर्ड, अब उसके मन के अंदर कोई प्रश्न नहीं है। अब आपके मन में ईश्वर के बारे में कोई प्रश्न संशय है? 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 नहीं है ना? तो यह दिव्य चक्षु भगवान ने जैसे उसको दिया, ज्ञान के दिव्य चक्षु आज आपको भी मिले, और उसके बाद जो विराट रूप दिखाया के सारे देवताएं कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे हैं, और फिर भगवान को एड्रेस करता है अर्जुन के, आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य युक्त है। ये परमात्मा को एड्रेस कर रहा है, और ये शंख चक्र गदा पद्म युक्त जो चारों ओर से तेज प्रकाश पुंज प्रकाशमान स्वरूप, ये मैं अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। तब बताया कि ये जो श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म है वो पुनर्जन्मों का स्वरूप दिखाया, वो चेहरे सारे उस विराट रूप में दिखाया। तो परमात्मा का असीम स्वरूप और श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म वाला स्वरूप, ये दोनों भेद को जैसे भगवान ने स्पष्ट कर दिया, आप इस जगत के परम आश्रय हो, ये मैंने समझ लिया, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। परमात्मा परम आश्रय है, और विष्णु क्या है? सनातन धर्म के रक्षक है, क्योंकि सतयुग के अंदर सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म का रक्षक कौन? विष्णु जी है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। तो इसलिए दोनों का अंतर स्पष्ट कर दिया कि आप आश्रय हो, इस जगत के आधार हो, और विष्णु चतुर्भुज कौन है? तो वो सनातन धर्म का रक्षक है। लेकिन कान दोनों बातें साथ साथ चल रही है, इसलिए लोग समझ नहीं पाए, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है इन श्लोकों के बीच में। और इसीलिए कहां कहां जब ह्यूमन इंटेलेक्ट इंटरफियर करती है इंटरप्रिटेशन में, तो क्या कर देती है, वो श्री कृष्ण को ही इसी स्वरूप से संबोधित करने लगते हैं और सोचते हैं कि वही परमात्मा परम शक्ति है, परम पवित्र है। तो परमात्मा ने जब दोनों बातें बहुत स्पष्ट क्लियर कर दी, जैसे कहा ना, हंस जो होता है नीर और क्षीर दोनों को अलग कर देता है, मोती और कंकड़ को अलग कर देता है, गीता के अंदर वो थर्ड आई ऑफ विजडम दे करके नीर और क्षीर दोनों को अलग कर दिया कि परमात्मा का दिव्य स्वरूप और देवताओं का स्वरूप कौन सा है, उस बात को स्पष्ट कर दिया, है ना। फिर भगवान से वो कहता है, इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य, क्योंकि जो उग्र स्वरूप दिखाया आपने देखा होगा विराट रूप के अंदर, के एक चेहरा है जिसमें सारे लोग जो है उसके मुख में समा जाते हैं, तो वो चेहरा देख करके भगवान से वो पूछता है कि ये उग्र स्वरूप धारण करने का मतलब क्या है। तो भगवान कहते उसका उद्देश्य कि जब वो श्री कृष्ण का नर स्वरूप हो जाता है, वही आत्मा वही है श्री कृष्ण की, लेकिन जब वो नर स्वरूप में कलयुग अंत में आ जाती है, साधारण रूप में आ जाती है, तो वो स्वरूप में सारे लोग जैसे उसके चेहरे के अंदर चले जाते हैं, माना समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि कलयुग के बाद पुनः सतयुग आना है। तो जो नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका नाश करना जरूरी है। तो कहा कि समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। अधर्मी की शक्ति और सामर्थ्य कितना भी अधिक क्यों न हो, लेकिन लोक सहकारी महाकाल की शक्ति ने उन्हें पहले ही मार दिया है। महाकाल कौन है? महाकालेश्वर कौन है? परमात्मा है। तो महाकाल ने अपनी शक्ति से उसको पहले ही नष्ट कर दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला श्री कृष्ण का साधारण स्वरूप नर स्वरूप, भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव ही है। समस्त दुनिया का कल्याण करना है, इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी का नाश करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे बाइबल में कहा जाता है कि पापी से नफरत न करो, पाप से नफरत करो, ठीक इसी तरह भगवान का लोक संहारकारी भाव भी उसका लोक कल्याणकारी भाव ही है, कि जब वो नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देता है तो संसार का कल्याण होता है। इसलिए सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला। इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देता है कि पुनः निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल ही समर्थ है। टाइम इज पावरफुल, समय अपने आप में समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी भगवान समय को वो अथॉरिटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो हरेक का भाग्य बनाना चाहता है। इसीलिए जब भाग्य बनाना है तो कहते हैं जो जितना करता है उस अनुसार उसको स्वर्ग में भी या सतयुग में भी उस भाग्य को प्राप्त करने का एक सौभाग्य देता हूं। तो भगवान कहता है कि अकेला काल ही समर्थ है, इसलिए सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि अर्जुन को उपदेश देता हूं। क्या उपदेश देता हूं? कि वह निर्भय होकर अपने जीवन का जीवन में कर्तव्य का पालन करे। ये पहले ही मरे हुए हैं, महाकाल ने पहले ही नष्ट कर दिया है, लेकिन भाग्य बनाना वो चाहता है कि उसका भाग्य बने, इसलिए उसको अवसर दे रहा है। और इसलिए कहा कि सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वो निर्भय होकर के अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसके भेद को समझो और कर्तव्य का पालन करो। पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का केवल साथ दे रहा है। इसीलिए दुनिया में कहावत है, आइदर यू आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और यू आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। या तो आप समस्या स्वरूप हो या समाधान स्वरूप हो। क्या बनना चाहते हैं? आर यू अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और आर यू अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन? क्या बनना चाहते हैं? पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए भगवान कहते हैं पुनरुत्थान के साथ थोड़ा सा सहयोग देना ये निश्चित सफलता को केवल साथ देना है। यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आप उस ईश्वरीय शक्ति के समीप चले जाते हो, उस सामर्थ्य के समीप चले जाते हो। और तभी ये साथ देना पुनरुत्थान में उसी के आधार से भाग्य प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन का सारा संशय समाप्त हो गया। अब क्षमा याचना करता है और क्या कहते, वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे नहीं करूं? हे सिद्ध संग, आपको नमस्कार कैसे नहीं करे, क्योंकि आप तो सृष्टि करता ब्रह्मा जी के भी आदि करता है। अब उसने समझा कि ब्रह्मा क्रिएट नहीं कर रहा है, कराने वाला कौन है? आज सवेरे भी देखा, करण करावनहार कौन है? परमात्मा है। ब्रह्मा द्वारा सर्जना, शंकर द्वारा महाविनाश। तो महाविनाश तो पहले ही हो गया है, शंकर तो केवल निमित्त बन जाता है। तो इसीलिए कहा, आप सृष्टि करता ब्रह्मा जी के भी आदि करता है। अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। शक्ति कहां से मिलती है देवताओं को, प्रकृति को? उस परमात्मा से। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। वन हु हैज नो फिजिकल फॉर्म, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। नाउ द रियलाइजेशन, अर्जुन का रियलाइजेशन बोल रहा है। और इसलिए कहा कि ये तीनों लोकों में आपके जैसे असीम सौंदर्य ऐश्वर्य वाला कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान, जैसे एक पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को भी क्षमा कर दिए। अर्जुन का अपराध कौन सा था? अर्जुन का अपराध कौन सा था? जो क्वेश्चन करता रहा बार बार उसको अज्ञानता के कारण, तो अब उसको ये रियलाइजेशन हुआ मैं किसको क्वेश्चन कर रहा था, किसको बार बार प्रश्न कर रहा था? परमात्मा को। वहां वो झुक जाता और कहते प्लीज फॉरगिव मी, है ना? परमात्मा तो क्षमा के सागर है, कैसे न क्षमा करते। तो भगवान फिर कहते हैं, मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, ये सबको नहीं मिलता। कोटों में कोई, आज जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में आने वालों की लिस्ट पता है कितनी थी, कितने लोगों को मना कर दिया गया? पद्मा पद्म भाग्यशाली हो जो यहां तक पहुंच सके। और आप वो पद्मा पद्म भाग्यशाली हो जो यहां तक आए, जिसने आज वो दिव्य स्वरूप को अपने तीसरे नेत्र से देखा है। तो इसलिए भगवान कहता है अर्जुन को, मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा, देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते। माना जो देवताओं को नसीब नहीं वो आज आप लोगों को नसीब था। कितने भाग्यशाली। फिर भगवान कहते मैं न वेदों से, वेद पढ़ने से मैं नहीं मिलता, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब से मैं मिलता नहीं हूं, न मुझे देख सकता है। फिर 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञान के आधार से, भगवान को देखने का आधार कौन सा है, इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य स्वभाव, दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के आधार से देख भी सकता है और उसमें से प्रेरणा लेकर के मेरे समान स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो स्वभाव को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म अनंत शांति धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। अब भगवान ये सृष्टि को कैसे रचता है, सतयुग को कैसे रचता है, इसको बताया कि उस परम धाम में मैं गर्भ को धारण करता हूं। गर्भ धारण करना माना अ थॉट इज क्रिएटेड, थॉट इज अ सीड, सो अ सीड इज क्रिएटेड, अ थॉट इज क्रिएटेड, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं, अर्थात उसमें सृष्टि का होने का मैं संकल्प, ये बीज धारण कर, स्फुरित करता हूं। और प्रकृति के संयोग से, एंड देन प्रकृति का संयोग, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे सोल और सॉइल, सोल और सॉइल जब दोनों का मिलन होता है तब जीवन इस संसार में होता है। तो सृष्टि के होने का एक संकल्प स्फुरित करता हूं और फिर प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है। इसलिए कहते नेचर इज गॉड। ये कॉन्सेप्ट कहां से आए? जब गीता को यथार्थ रूप में न समझा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आए कि नेचर इज गॉड। नेचर इज गॉड नहीं, लेकिन परमात्मा ने जो बीज को स्फुरित किया उसको धारण करने वाली कौन सी शक्ति है? नेचर है। इसलिए वो माता हो जाती है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। तो प्रकृति माता है इसलिए धरती माता कहा और परमात्मा को पिता कहा। कई लोग पूछते हैं कि गॉड को फादर कहते मदर क्यों नहीं कहते? उसका जवाब है गॉड को फादर कहते मदर क्यों नहीं कहते? क्योंकि मदर कौन है? ये प्रकृति है, ये धरती है जो समस्त शरीरों को रचती है और वो बीज उसमें समा जाता है तो जीवन स्फुरित होता है और उसका साक्षात स्वरूप वो प्रकृति से बनी हुई जो मां है। इसलिए आज साइंस कहता है कि मां अपने आप में संपूर्ण है। लेटेस्ट मेडिकल साइंस की जो रिसर्च है वो यही कहती है कि नारी अपने आप में इतनी सक्षम है कि उसके बोन मैरो में स्पर्म तैयार होते हैं। इसीलिए जीसस को जन्म देने वाली वर्जिन मेरी थी, पिता नहीं दिखाते। यानी द्वापर युग तक, आज से 2000 साल तक, उसके पहले तक नारी अपने आप में इतनी सक्षम थी जो किसी भोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी और फिर भी संतान उत्पत्ति कर सकती थी। अगर मदर मेरी को आज भी लोग पूछते हैं वर्जिन मेरी होने के कारण, पवित्र होने के कारण, ये सामर्थ्य होने के कारण, तभी साइंस ने रिसर्च किया और तब पता चला कि उसके बोन मैरो में ही स्पर्म तैयार हो जाते हैं। इसलिए उसको भोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सतयुग में उत्पत्ति कैसी होती है, संतान उत्पत्ति कैसे होती है? योग बल से, कि वहां पिता सिर्फ संकल्प करता है, द थॉट इज प्रोड्यूस्ड, और नारी उस थॉट को रिसीव कर लेती है और उसी से संतान उत्पत्ति होती, इसीलिए पवित्र विधि से उत्पत्ति होती है। ये सतयुग की प्रणाली है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तक पवित्र विधि से ही उत्पत्ति होती रही है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही, न बीज क्रिएट करने की ताकत रही, न वो गर्भ धारण करने की ताकत रही नारियों में, तब भोग बल को एक माध्यम बना दिया। बाकी सदा काल ये संसार भोग बल से नहीं चलता है। इसीलिए वो पूजनीय बन जाते हैं, क्योंकि इतनी पवित्र विधि से। इसीलिए मां को ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है। क्यों ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है? क्योंकि परमात्मा जो पिता है, उसने एक नारी को ऐसा बनाया जो अपनी शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति करती है और ये संसार चल सकता। परमात्मा के पास पूरा प्लानिंग है कि आने वाली दुनिया को कैसे चलाना है। उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया कैसे चलेगी, कैसे होगा। नहीं, परमात्मा ने सारा प्लानिंग बता दिया है कि पवित्र विधि से ये संसार चल सकता है। इसीलिए गीता में बार बार भगवान ने कहा, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है। कई लोग हमें कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से दूर क्यों ले जाती है? अगर यही नेचुरल होता था उत्पत्ति का स्वरूप सदाकाल के लिए, फ्रॉम एजेस टू एजेस, तो आज जब किसी का बलात्कार होता है तो उसको हैवानियत क्यों कहते हैं? इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। उसको सजा क्यों देते हैं? उसको हैवानियत, राक्षसपना क्यों कहा गया है? मनुष्यपना है ना फिर तो? ये मनुष्यपना नहीं है, ये राक्षसपना ही है। कि जब मनुष्य राक्षस वृत्ति वाला हो जाता है, तब वह हैवान्यत वाला कार्य करता है। अगर यही नेचुरल इंस्टिंक्ट होती थी तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? उसको गाली क्यों देते हैं? उसको सजा क्यों देते हैं? क्योंकि ये नेचुरल है ही नहीं, ये विकृति है, ये विकृति है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है। भगवान जिसको शत्रु बताता है, उसको आप कहे कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो ये कितनी अज्ञानता हुई, कितनी अज्ञानता हुई। ये तो कलयुग की विधि है, खाली कलयुग के अंदर लोगों में ताकत नहीं है, इसलिए ये निम्न कोटि की विधि को अपनाते हैं उत्पत्ति के लिए। और ये विकृति के कारण आज जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, इसी के कारण हुआ है। और इसीलिए प्रकृति भी इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति विकृत हो गई तो प्रकृति भी इम्बैलेंस हो गई। क्योंकि उसकी उत्पत्ति कैसी होगी? वर्ण शंकर, जिसको गीता में बार बार शब्द दिए, वर्ण शंकर ही पैदा होंगे। कि वो औलाद जो पवित्र विधि से नहीं है, विकृति विधि से है, तो वो विकृत ही पैदा होते हैं। इसीलिए आज दुनिया में इतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आज दुनिया के अंदर इतने भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार, ये सारा जो बुरा आचार है उसका कारण क्या है? विकृति, इम्प्यूरिटीज। इसलिए परमात्मा जब पुनः स्थापना करते हैं, तब भगवान ने कहा, जो अपने व्रत में दृढ़ रहता है, व्रत माना ब्रह्मचर्य, व्रत में दृढ़ रहता है, उसी से एक उत्पत्ति होती है। और कैसे उत्पत्ति करता है? तो जब मनुष्य आत्मा वो परमात्मा के समान दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेते, तब यह उत्पत्ति का स्वरूप बदल जाता है और दिव्य हो जाता है, जिसको आज भी लोग याद करते हैं, शास्त्रों में भी जिसका वर्णन है। और फिर 16वें अध्याय में बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है कि इस कल्प वृक्ष में, पुनः अपने स्वरूप के बारे में स्पष्टीकरण देता है कि इस कल्प वृक्ष में, ये संसार एक कल्प वृक्ष के समान है, तो इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं, मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं। साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हो। इस पृथ्वी पर पांचों भूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोमरस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। परमात्मा ही सोमरस यानी ये ज्ञान को हजम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान को इतना सहज हजम नहीं होता है, बहुत पावरफुल ज्ञान है। जब तक परमात्मा की शक्ति नहीं मिलती है तब तक उसको हजम नहीं कर पाते हैं। मैं ही सर्व आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूँ और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, जो भी मिथ्य ज्ञान था, मिथ्य धारणाएं थी, कॉन्सेप्ट्स थे, उसको मैं समाप्त कर देता हूँ। दोषों की विस्मृति हो जाती है। तो परमात्मा के ज्ञान से नवीन ज्ञान, इसीलिए ये ज्ञान नया है। लोग यही कहते हैं, अब तक तो शास्त्र में ये बातें नहीं सुनी, अब तक तो ये नहीं पता चला कि मनुष्य मनुष्य बनता है, अब तक तो ये पता नहीं चला कि परमात्मा का दिव्य स्वरूप कैसा है, अब तक तो पता नहीं चला। तो ये नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी जो पूर्व मिथ्य धारणाएं थी, कॉन्सेप्ट, और दोषों की विस्मृति, और जिस गलत कॉन्सेप्ट के कारण ही दोष आ गए थे, ये विकृति आ गई थी, उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। विस्मृति किसकी? दोषों की। विस्मृति किसकी? अज्ञान की। तो अज्ञान की विस्मृति हो जाती है, ज्ञान की स्मृति आ जाती है। परमात्मा की स्मृति आ जाने से संसार परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन की विधि भगवान ने बताई। हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड? तो स्मृति, ज्ञान और विस्मृति से ये संसार का परिवर्तन परमात्मा करते हैं। और फिर 18वें अध्याय में अंत में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं अर्जुन को, इस प्रकार, आप सभी को कह रहे हैं, इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, मैंने तेरे लिए कहा है, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। भगवान आपको कह रहा है, आप मेरे प्रिय हो। कितना सौभाग्य है ये चीज। तो इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात करता हूं। नाउ आई टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल। इस पर पूर्ण विचार करना। देखो, भगवान किसी भी बात को थोपते नहीं है हमारे ऊपर, और इसलिए कहते इस पर पूर्ण विचार करना और उसके पश्चात तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करना। भगवान ने आज सारा ज्ञान दे दिया और अब कहते हैं, अब मैंने सारी बातें तुम्हें बता दी, कैसे ये दुनिया चलने वाली है, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा, अभी उस पर पूर्ण विचार करना अपने विवेक से और फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करना। इसीलिए वो परमात्मा है, कोई बात के लिए फोर्स नहीं कहता। आज कोई माँ बाप को कोई अच्छी बात मालूम पड़ते तो अपने बच्चों पर फोर्स करने का प्रयत्न करते, फोर्स, तुमको ऐसा ही करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। भगवान फोर्स नहीं करता है। उसने कहा, मैंने बुद्धि दे दी, अब तुम्हें जैसे कर, सो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू डू। भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके पीछे भी भाव यही है कि भगवान किसी के जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो सारी बात स्पष्ट कर देता है, करना न करना ये आपकी मर्जी है ना। हर बार आपको ब्रह्मा कुमारी बहनों ने निमंत्रण दिया होगा, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू, हर बार आपने क्या कहा, बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे, यही कहा था ना। अभी जो आए किसकी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की? ऊपर वाले की। अब यहां से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे? हाँ, अब आपकी मर्जी होंगी। भगवान ने कह दिया अब आपकी मर्जी, मैंने ज्ञान दे दिया, सब स्पष्ट समझा दिया, अब करना न करना दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। वो भगवान का डिसीशन नहीं है, इसीलिए जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, नहीं करेगा वो नहीं पाएगा, है ना। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तू मुझे भी, क्योंकि भगवान जो नई दुनिया रचते हैं ना, इलेक्शन से नहीं रचते, सिलेक्शन से रचते हैं। उसने जरूर कोई ना कोई खूबी आप में देखी होंगी, इसलिए सिलेक्शन में तो ले लिया कि यू आर केपेबल, उसका विश्वास है कि आप केपेबल है, आप वर्दी है, उसका विश्वास है, इसलिए उसने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अब उस सिलेक्शन में रहना है या नहीं रहना है वो किसकी मर्जी होगी, हा? आपकी मर्जी। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तू मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था, मैं भी कोई कम थोड़ी था, इसलिए उसने सिलेक्शन में ले लिया। तभी कहा कोटो में कोई, कोई में भी कोई, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर माया को पार कर जाते हैं, ज्ञान दे दिया। फिर कहा परंतु मेरा चिंतन करने से, भगवान फोर्स नहीं करता है लेकिन साथ में एक और बात भी कह देते, परंतु मेरा चिंतन करने से, मेरा अनन्य भक्त बनने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ये मेरा वचन है। दिस इज अ प्रॉमिस मेड बाय गॉड। अब इतनी गारंटी आप दुनिया में कोई लेने वाला है ना, उसके बाद भी अगर उसकी मत पर न चले, उसके बताए हुए रास्ते पर न चले तो उसको क्या कहेंगे, जो इतनी गारंटी लेता है। आज की दुनिया के लोग गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कहता है, अरे ये भगवान के मार्ग पर चलने लगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे तो दुनिया क्या कहेगी, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मित्र संबंधी क्या, वो लोगों ने गारंटी लिया है क्या? भगवान तो गारंटी लेता है, तो किसकी मत पर चलना चाहिए, दुनिया के लोगों की? माना हम हमेशा अपने जीवन को उसी तरह से जीते आए, लोग क्या कहेंगे, कभी हम अपनी मर्जी से जिए हैं आज दिन तक, लोग क्या कहेंगे, माना लोगों की खुशी के लिए हमारा जीवन है। अगर ये सोचो भगवान क्या कहेगा और उसके आधार पर जीवन चलाओ तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो भगवान गारंटी करता है, ये मेरा वचन है तुम्हें, इसलिए हे अर्जुन सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम रज। हे अर्जुन सर्वधर्म का परित्याग करके, जो दैहिक लिमिटेशंस वाले धर्म है, ये मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा मत ये तेरा मत, ये मेरा गुरु तेरा गुरु, ये जो लिमिटेड इंटेलेक्ट है उसको तुम छोड़ और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये नदर गारंटी, ईश्वर की दूसरी गारंटी, मैं तुझे अब तक तुमने जो भी पाप किए होंगे मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, हाँ क्या करेंगे कि अभी भी सोचेंगे, हाँ और फिर डिसाइड करेंगे। फिर बहुत सुंदर बात कही है, ये गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो। ये इतनी सीक्रेट्स जो आपको पता चली है गीता से, उन लोगों को कभी नहीं कहना। देखो भगवान ये भी सावधान कर देते जाने से पहले कि उन लोगों को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो, जो आपका मजाक उड़ाए, जो एकनिष्ठ न हो, जो भक्त न हो और जो भगवान से द्वेष करता हो, जिनको भगवान से ही द्वेष हो, नफरत हो, ऐसे लोगों से नहीं करना, जो नास्तिक हो उसको नहीं कहना। परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करके इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को बताता है, शिव भक्तों को बताता है, वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर मेरे पास आएगा। इस संसार में उससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान का प्रिय बनने की एक ऑफर है। ये ऑफर को स्वीकार करेंगे? हाँ, जो इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है और श्रद्धा से सुनाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। सतयुग के अंदर जो सत्यता का युग है, जहां के लिए गायन है कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतना अहिंसा का युग था, तो वहां के लोग कैसे होंगे? अगर पशु ऐसे थे तो लोग कैसे होंगे? सत्यता का युग जिसको कहा गया, कई लोग सोचते नहीं सतयुग में भी पाप कर्म होते थे, सब युगों में असुर भी पैदा हुए, अच्छे लोग भी थे बुरे लोग। अरे जहां पशु में इतनी यूनिटी थी, इतनी पवित्र भावनाएं थी, अहिंसक वृत्ति थी कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, जहां दूध घी की नदियां बहती है, इतनी सुंदर प्रकृति अगर हो तो वहां बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिसने जो चश्मा पहना होगा उसको दुनिया वैसी ही नजर आएगी। अब यहां ही बुराइयों का चश्मा पहना है तो उसको हर युग बुरे ही नजर आते हैं, उसमें दोष तो और किसी का नहीं है। चश्मा जब तक उतारेगा नहीं तब तक समझ में आना नहीं है। तो इसलिए कहा जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। और ये ज्ञान सुनकर के संजय कितना गदगद हो जाता है और वो कहता है इस प्रकार मैंने व्यास जी की कृपा से यह अद्भुत संदेश सुना जो मेरे शरीर को रोमांचित कर रहा है। जब मैं ये पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण गदगद हो उठता हूं, इतना भाव विभोर हो गया है। और जहां योगेश्वर है वहां ऐश्वर्य विजयी अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती ही है, ऐसा मैं मानता हूं। और अंत में अर्जुन भगवान से निवेदन करके कहता है, पूछता है, भगवान अर्जुन से पूछते हैं क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? आप सबने सुना एकाग्रचित होकर के सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ? दूर हुआ कि नहीं हुआ? भगवान पूछ रहे हैं हम सबसे। अर्जुन ने कहा हे प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति आ गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। ये अर्जुन का प्रॉमिस है। आप सबका प्रॉमिस है? है प्रॉमिस? ये अर्जुन का प्रॉमिस है। कितना सुंदर गीता ज्ञान है। एक एक बात को, ये तो आपको दो सेशन में मुझे पूरा करना था इसलिए भगाना पड़ा, खाली उसी बात को फोकस में, सर्मनाइजर ऑफ गीता को फोकस करके सारे श्लोक्स मैंने निकाले थे, अलग किए थे हर अध्याय से। लेकिन पूरा गीता ज्ञान अगर सुनेंगे तो सचमुच गदगद हो जाएंगे। कितनी सुंदर वाणी है, कितना सुंदर गुह्यते गुह्य ज्ञान है कि सचमुच ज्ञान का सागर किस तरह ज्ञान देता है, अद्भुत। बार बार आप सोच सोच करके महसूस करेंगे कि जैसे सचमुच सभी पापों से मुक्त हो गए। और कितने लकी हैं हम जो हमें ये सुनने का अवसर मिला, नहीं तो दुनिया में इतने बिजी होते। आप लोगों के पास टाइम होता है क्या? इतना समय निकाल सकते हैं सुनने के लिए? नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, दो मिनट हम साइलेंस में, लास्ट के 5-6 मिनट्स बची है तो उसको हम, हाँ वही 5 मिनट है, योग करेंगे। बहुत सुंदर गीत बजेगा।
खुशियों से भर दिया।